आहदायते नैव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयौ। भरत के मन में कितना प्रेम है। भगवान वन में क्यों गए, देवताओं ने प्रार्थना की, चित्रकूट में क्यों रहे, भरत का चरित्र बढ़ाने के लिए। नहीं तो भगवान को दंडकारण्य में जाना था, दंडकारण्य की सीमा अभी चित्रकूट में नहीं आती है। चित्रकूट में भगवान 12 बरस तक रहे, ऐसा लोग कहते, 11.5 बरस तक खूब रहे वहां, केवल इसलिए कि चित्रकूट के यहां भरत का चरित्र निखरेगा, नहीं तो भगवान आगे चले आते। और भरत का राज्य करना वो भरत के स्वभाव के अनुसार ठीक नहीं बैठ रहा था। भरत के स्वभाव में तो रग रग में भगवान का प्रेम था, भगवान के प्रति भक्ति थी, इसलिए सभी संत महापुरुष भरत चरित्र से ये बताते हैं कि भगवान का प्रेम संसार में सबसे ऊंचा मूल्यवान है। राज्य वैभव कीर्ति परिवार सब उसके पीछे रह जाते हैं। और बड़े शालीनता से भरत जी ने कहा है, जिसको वशिष्ठ जी आदि ऋषियों ने माना है कि भरत ये बात तो हमारे पैदा ही नहीं हुई, भगवान से प्रेम करना है ये किसी साधन से नहीं होता है। प्रेम तो एक अंदर से एक लौ लगती है प्रेम की, भगवान के प्रेम के लिए कोई साधन करे तो साधन थोड़ा दूसरा रास्ता हो जाता है। संतों ने तो एक ही बात कही, भगवान से प्रेम करना हो तो भगवान को अपना मानिए, क्योंकि अपना मानना है ये प्रेम का बीज है। किसी वस्तु को हम अपनी मानते हैं तो वस्तु में प्रेम होता है, कुटुंब को अपना मानते हैं तो कुटुंब में प्रेम होता है, किसी को भी अपना मानते हैं। संसार में भी जिस संबंध को हम बहुत ज्यादा अपना मानते हैं तो वही संबंध भगवान के साथ जोड़ लेना चाहिए। माता अच्छी लगती हो तो भगवान को मां मानो, पिता अच्छे लगते हो तो भगवान को पिता मानो, पुत्र अच्छा लगता है, माताओं का पुत्र में बहुत प्रेम होता है, सबसे ज्यादा प्रेम मां का बेटे में होता है, तो भगवान को बेटा मान लो। कि भगवान को बेटा कैसे, भगवान को बहुत अच्छा लगता है, भगवान को भाई मान लो, भगवान को मित्र मान लो। संतों ने कहा है भगवान हमारे बहुत भोले भाले सीधे साधे, इस मामले में कोई कहेगा कि हम आपको बेटा मानते हैं, यार मैं तो आपका बेटा हूं ही, मैं आपका बेटा हूं, कि हम तो आपको अपना पिता मानेंगे, तो भाई सारी सृष्टि को पैदा मैंने किया है, तो हम आपको बेटा कैसे माने कि मैं यशोदा का बेटा बना हूं ना, कौशल्या का बेटा बना हूं ना, मुझे तो बेटा बनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे मां बहुत कम अवतारों में मिली है। ऐसे भगवान के साथ जो संबंध करें, हमारे भरत जी महाराज अब भगवान के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान के आश्रम के पास उन्होंने सीताराम जी के चरण देखे, मिट्टी के ऊपर चरणों का चिन्ह देखा, भगवान की रेखाएं समझ गए, वज्र का अंकुश का कमल का ये चिन्ह, ध्वजा का चिन्ह। तो भरत जी महाराज उन चरणों के चिन्ह के ऊपर लोटपोट हो गए, वहां की मिट्टी यूं लगाने लगे अपने। न्यवेष्टयत पाद रजस्सु सानुजः, न्यवेष्टयत मन लुढ़क गए उसमें, और कहने लगे शत्रुघ्न इससे ज्यादा आनंद कहीं मिलने वाला नहीं है, चाहे मंदाकिनी में स्नान कर लो, चाहे गंगा जी में स्नान कर लो, इतना इस चरण धूलि में जो आनंद है वो आनंद कहीं मिलने वाला नहीं है। तभी तो देखो ब्रह्मा आदि देवता और बड़े बड़े श्रुतियां इस चरण रज को ढूंढने के लिए कितना प्रयास करती है। अब जो आगे बढ़ते हैं, जो जो आगे बढ़ते हैं त्यों त्यों आनंद आनंद जाशु स्नपित स्तनांतर है, उनके यूं आनंद यूं आनंद के आंसू यूं बरसे यूं जा रहे हैं, यूं आनंद के आंसू बरस रहे हैं। और जो ही कुटिया के अंदर प्रवेश किया तो उसी समय में जब भगवान की छवि को देखा तो देखते ही भरत जी महाराज बड़े बेसुध हो गए और जहां थे वहीं गिर गए, और जहां गिरे वहीं भगवान के चरण थे, भगवान के चरणों को पकड़ लिया और फूट फूट करके प्रेम के अंदर रोने लगे। राम जी ने उनको उठाया, यूं लेकर के आकृष्य यूं पहले तो खींचा और फिर राम जी ने अपने भुजाओं में लिया और सब प्रकार से भरत जी को कहा, आओ भरत आओ, वाह बेटा अब क्या है। राम जी भी खूब रोने लग गए, भरत जी भी रोने लग गए। अथता मातरः सर्वे सर्वा, अब सब माताएं भी वहां आ गई, माता भी पीछे पीछे आ रही थी। राम जी ने भरत खुद को छोड़ा और जाकर के अपने माताओं के चरणों में प्रणाम किया, दौड़े दौड़े गए कौशल्या जी के चरणों में, सुमित्रा के कई सबके चरणों में प्रणाम किया, वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया, आश्रम में जो आए सबको प्रणाम करे, बड़े बूढ़ों को सबको, सब लोग बैठ गए। राम जी ने पूछा, आप सब यहां आए हो, सबसे पहले मैं अयोध्या में महाराज दशरथ जी की कुशल क्षेम पूछना चाहता हूं, पिताजी बिल्कुल स्वस्थ है ना, मेरे वियोग का उनको दुख तो नहीं है, क्योंकि पिताजी के दुख की मैं रात दिन परिकल्पना करता रहता हूं, कितना दुख हो रहा होगा। वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, तुम्हारे वियोग में तुम्हारे पिता तुम्हारा ही चिंतन करते करते राम सीते राम लक्ष्मण ऐसे करते करते ही संसार से चले गए। ये सुनकर के राम जी मानवी लीला करते हुए एकदम अचेत से हो गए और सब माताएं भी रोने लग गईं। और राम जी जोर जोर से बोलते हैं कि कितनी दया थी हमारे पिता की हमारे पर, हमको छोड़कर चले गए पिताजी, अब कैसे मिलना होगा, मैं अनाथ हो गया, कितना आपने हमारा प्यार किया स्नेह किया गोदियों में खिलाया। लक्ष्मण जी और सीता जी भी विलाप करने लगी। वशिष्ठ जी ने सबको शांत वचनों से समझाया और फिर राम जी मंदाकिनी में स्नान करने गए और वहां उन्होंने फलों का पिंड दान दिया कि वयम यदन्ना पितरस तदन्ना स्मृतिनोदिता। देखो जो व्यक्ति जैसा भोजन करता है अपने पितरों को वही भोजन देता है। एक बात थोड़ी सी अड़चन में आती है कि जिस दिन एकादशी का श्राद्ध होता है उस वक्त लोग कहते हैं कि एकादशी के श्राद्ध में क्या करना चाहिए, तो एकादशी ये देखना चाहिए कि पहले वो जिन माता पिता के लिए दादा दादी के लिए श्राद्ध करते हैं वो एकादशी करते थे क्या। यदि वो एकादशी करते थे तब तो फलाहार का ही वहां पर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, और यदि वो एकादशी नहीं करते और अपने एकादशी करते हो तब क्या करना चाहिए, तो उनके लिए तो वही भोजन बनाए और अपने लिए फलाहार का भोजन करना चाहिए। लेकिन जिसका नियम ही है, कोई ऐसे ही नहीं, हमारा तो फलाहार का ही नियम है बरसों से, तो वो फलाहार से ही वह उनका तर्पण करे। तो वयम यदन्ना पितरस्त दन्ना, हमको जो अन्न मिलता है पितरों को भी वही देना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने लौकिक रीति सब निर्वाहित की और फिर वे अपने आश्रम में आए। आश्रम में आए सब लोग बैठे थे तो भरत जी ने कहा कि हे महाराज, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, आप आपके भाग्य के पीछे ही हमारा भाग्य चलता है। अब पिता चले गए तो आप हमारे बड़े भाई हो, बड़े भाई को हमारी परंपरा के अनुसार राजगद्दी पर बैठना चाहिए, तो आप राजगद्दी को स्वीकार कीजिए। क्षत्रियों का भी ये कर्तव्य है कि प्रजा का पालन करें, आप प्रजा का पालन कीजिए और फिर राज्य करते हुए खूब यज्ञों का अनुष्ठान कीजिए, फिर आपके पौत्र पुत्र पौत्र आदि हो जाए, फिर आप खूब आनंद के साथ वन में आइए, हम सब भी आपके साथ हो जाएंगे, अपने बेटों को राजगद्दी दे दो और वन में जाकर भगवत स्मरण करो, ये अपने राजकुलों की परंपरा रही है, इस परंपरा का निर्वाह करो। इदानीं वनवासस्य कालो नैव प्रसीदमे, ये तो अभी वनवास का समय है ही नहीं आपका, और इस ऐसा करने से मेरे माँ का पाप भी धुब जाएगा और आप मेरे माँ के इस अपराध को चित्त में मत लाइए, और स्वस्थ मन से आप अयोध्या पधार कर अयोध्या का शासन संभालिए। इतना कहकर राम जी के चरणों में गिर गए। राम जी ने बड़े प्रेम से उसको उठाया और बड़े स्नेह से देखते कि देखो भाई भरत, मैं तुम्हारी बात सब सुना हूं, लेकिन एक बात है, पिताजी ने क्या आज्ञा दी है? एक क्षत्रियों का सामान्य धर्म तुमने बताया है, एक सामान्य आज्ञा होती है, एक विशेष आज्ञा होती है। तुम्हारी जो बात है वो शास्त्र की आज्ञा है, सामान्य आज्ञा है, सब ठीक है, परंतु पिताजी ने क्या कहा है? पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। उन्होंने तो राज्य आपको दिया है, 14 वर्ष का दंडकारण्य में निवास मेरे लिए दिया है, अतएव आज पिताजी संसार में है नहीं, इसी आज्ञा के चलते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हैं और मैं उनकी आज्ञा के अनुसार अयोध्या को छोड़ करके उनकी प्रतिज्ञा को निर्वाहित करने के लिए वन में आ गया हूं। अब ये राज्य का समय नहीं रहा, ये राज्य तो तुम्हारा ही है, तुम इस राज्य को स्वीकार करो। तथा पित्रैव सुव्यक्तम राज्यम दत्तम तवैव हि, इसलिए पिता ने दो विभाग कर दिए, जहां अपने दोनों के बीच में कोई बात सोचने समझने की रही नहीं, तुम अयोध्या का शासन करो और मैं वहां दंडकारण्य में निवास करता हूं। देखो पिता के वचनों का मन चाहे अर्थों से उल्लंघन करना कितना बड़ा दोष होता है, पिता भी नरक में जाएंगे और पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले भी नरक में जाएंगे, इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तुमको बड़े प्रेम से प्रजा का शासन करना चाहिए। भरत जी ने कहा कि महाराज एक बात ये भी बताइए, ये भी सोचने की है कि पिता ने किसके कहने से ये वचन दिए हैं? एक स्त्री के कहने से वचन दिए हैं, तो एक स्त्री के वशीभूत होकर कोई बात कही जाए वो प्रामाणिक नहीं होती, वो शास्त्र की नहीं होती, वो कोई जो है आर्ष वचन नहीं होते, वो तो भ्रांत चित्त में निकल गई बात और उन्होंने कह दिया, तो वो कोई बात किस अवस्था में कौन आदमी बोलता है वो देखना चाहिए। तो तत्सत्यमिति न ग्राह्यम, उन्मत्त हो, कोई पागल हो, कोई बेसुध हो, कोई परवस्था से कोई बात कहे तो वो उसकी इच्छा थोड़ी समझी जाती है। यदि राम जी, यदि अपने पिताजी आपको वन में भेजने से खुश होते और मुझे राज्य आपको वन में भेजने से खुश हुए होते तो आपके वियोग में उनके प्राण क्यों निकले? इसलिए वो मन से तो आपको भेजना ही नहीं चाहते थे, मन से तो उन्होंने आपके राज्य का प्रबंध किया था, अतः उनके मन की बात को समझिए। स्त्री ने दबाया उनको, कैकेयी ने दबाया, दबाने से उन्होंने बात बोल दी, और वो भी अपनी तरफ से नहीं कि कैकेयी ने कहा कि मेरे दो वरदान है, ये दो वरदान मानो, ये तो कोई बात नहीं होती ना, ये आज्ञा नहीं होती पिता की, इसलिए आपको राज्य लेना चाहिए। राम जी ने कहा कि देखो, पिता के मुख से जो वचन निकलता है वो पिता चाहे कैसे ही बोले, आखिर वो पिता की आज्ञा ही तो है ना। अपने पिता ऐसे नहीं थे, अपने पिता बड़े धर्मात्मा रहे हैं। अपने पिता जिस युद्ध के अंदर माता कैकेयी ने उनकी सहायता की, वो युद्ध धर्म के लिए कर रहे थे। देवताओं की रक्षा करना ये हमारा धर्म होता है। कोई अयोध्या पर तो आक्रमण था नहीं, कोई स्वार्थ के लिए कोई युद्ध था नहीं, वो तो देव पक्ष में युद्ध कर रहे थे और उसमें कैकेयी ने उनकी सहायता की, तो धर्म में स्थित होकर के उन्होंने उनको दो वचन दिए हैं। अतः यदि माता कैकेयी ने दो वरदान मांगे हैं तो ये धर्म पूर्वक वरदान है, इसमें तुम किसी प्रकार से असत्य नहीं देख सकते। यदि आप उनको असत्य करोगे तो महापुरुष होते हैं वो असत्य से डरते हैं, क्योंकि वो नरक से भी ज्यादा कष्ट देने वाला होता है। और फिर उसने मांगने से पहले याद दिलाई है कैकेयी जी ने, माता जी ने, कि देखो मेरे दो वरदान आपके पास सुरक्षित है, आप दोगे ना। उस समय यदि जो है पिताजी बोल देते कि देखो जो है सारे वरदान के लिए तो मैं कहता नहीं हूं, जिस वरदान से राम का अहित हो, अयोध्या का अहित हो, वो वरदान तो मैं दूंगा नहीं, इसके अलावा तुम कोई वरदान मांगो। ऐसी बात तो कही नहीं, उन्होंने प्रतिज्ञा पूर्वक कही, मैं सत्य की सौगंध खा के कहता हूं मैं ये काम करके रहूंगा, तुम जो मांगो सो मांगो, कोई रोक टोक तो लगा ही नहीं। रोक टोक नहीं जगाई, रोक टोक नहीं चलाई, तो उनको जो मांगना था सो मांग लिया। अब पिताजी के वाक्य को जो इतनी समझदारी के साथ वचन दे रहे हैं, उनको ऐसे में कैसे मान लूं कि स्त्री के अधीन होकर के उन्होंने ये बात कही है। भरत जी ने कहा कि इसका अर्थ तो यह है कि आप अयोध्या नहीं चलेंगे कि नहीं चलेंगे, तो फिर मैं भी अयोध्या नहीं जाऊंगा। क्यों? क्यों नहीं, मैं भी आपके साथ रहूंगा, मैं भी आपके समान ये ऐसे वस्त्र पहनूंगा। राम जी ने कहा कि पिताजी ने तुमको राज्य दिया है, तुम ऐसा क्यों करते हो? लक्ष्मण जी तो आपके साथ चल रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगा, और यदि आप मुझे साथ नहीं चले जाएंगे तो आप ही के सामने आप भूख हड़ताल करके मैं बैठ जाता हूं। इतना कहकर भरत जी उठ करके घास फूस का आसन लगा करके आंख बंद करके बैठ गए। राम जी ने कहा वशिष्ठ जी की, वशिष्ठ जी महाराज, इशारा ही किया, बोले नहीं। थोड़ा मोबाइल बंद कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ध्यान टूटता है इससे भाई। तो भरत जी महाराज जब इस प्रकार से कुशासन पर बैठ गए, तब राम जी महाराज ने नेत्रांत संज्ञाम गुरुवे चकारे, अपने गुरु जी से नेत्र से इशारा किया, यूं कि जाओ समझाओ, इसको समझाओ। तब वशिष्ठ जी उठ करके भरत के पास गए। भरत के पास जाकर कहने लगे, बेटा ऐसे हट नहीं किया करते हैं, प्रेम और हट ये दोनों साथ में नहीं रहते हैं। कोई सोचता हो कि मैं हट पूर्वक मेरे प्रेमी को झुकाऊं तो उसमें प्रेम बड़ा नहीं होगा, वहां हट हो जाता है। तुम जरा हमारी बात को अच्छी तरह से सुनो, तुमने राम को समझ क्या रखा है? रामो नारायण है साक्षात, ये साक्षात नारायण भगवान है, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आए हैं। और ये जो तुम्हारी माँ ने वरदान मांगे हैं, पिता ने वरदान दिए हैं, सब कुछ हुआ है, ये राम की प्रेरणा से हुआ है। ये स्वयं वन में जाना चाहते हैं, अभी अयोध्या में रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको रावण का वध करना है। और सीता ही साक्षात योग माया है, सीता कभी इनसे अलग नहीं रह सकती है। और तुमने कहा कि लक्ष्मण के समान मैं साथ रहूंगा, लक्ष्मण शेषनाग है, शेषनाग को तुमने कभी नारायण भगवान से अलग देखा नहीं? देखा ना, तो वो शेषनाग अपना काम कर रहा है, योग माया अपनी काम कर रही है, राम जी ने अपनी माया के द्वारा सब कुछ लीला करवाई है, इसलिए चुपचाप अयोध्या चले चलो। जब ये राम जी रावण को मारेंगे अपने आप आ जाएंगे। अच्छा भरत तुम विचार करो, कभी भी उम्र में केकई ने इतने समय तक कभी भी राम को कुछ कठोर शब्द भी बोले थे क्या? तुम ही स्वयं जानते हो कि केकई की गोद में राम कितने रहे, और आज केकई ने जो अपने पति से ये दो वरदान किए हैं, ये सब कुछ बात राम की बनाई हुई है, माया इन्हीं की है। तुम्हें क्या बताऊं, तुम तो यहां थे नहीं, हमको सब पता है। नारद जी एक दिन पहले आके गए थे और नारद जी ने उनको सब बात समझा दी थी कि ऐसे ऐसे राज्य की तैयारी हो रही है, आप क्या कर रहे हो। ऐसी स्थिति में आप राम जी के जो मन के संकल्प हैं, जो लीला करना चाहते हैं, उसको किसी प्रकार से उल्टाइए मत। अपना आग्रह छोड़ दीजिए, राम जी को ले चलने के लिए तुम्हें कहना था तुमने कह दिया, अब तुमको विवश नहीं करना चाहिए और अपने नगर की तरफ ही अपने को चलना चाहिए। ये रावण को मारेंगे अपने आप अयोध्या आ जाएंगे। तो भरत जी महाराज जी बात सुनकर के बड़े आश्चर्य में डूब गए। गुरुदेव ये सब राम जी की इच्छा से हुआ है, बिल्कुल बस राम की इच्छा से हुआ है। तो केकई के द्वारा जो कठोर वचन निकले, इसमें केकई की कोई दुर्भावना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस विषय में जो केकई की दुर्भावना समझेगा वो बड़ा भारी पाप करेगा। तब तो गुरुदेव आप जैसा कहे वैसा करने के लिए तैयार हो, इसलिए हे वत्स तुम वापिस चलने की तैयारी करो, आओ राम जी के पास से विदा मांग लो। भरत जी आए, राम जी के चरणों में गिर गए, रोने लग गए और कहने लगे, महाराज गुरुदेव के द्वारा मुझे बहुत बातों का ज्ञान हुआ, आपकी चरण पादुका मुझे दे दीजिए, इन चरण पादुकों को ही आपका रूप मानकर मैं सेवा करूंगा और जब तक आप नहीं आएंगे तब तक इन चरण पादुकों को ही मैं अयोध्या का राजा मानूंगा। राम जी महाराज बहुत प्रेम से भरत जी को चरण पादुका दे देते हैं और राम जी की उन्होंने परिक्रमा की। और जाते जाते भरत जी ने रोते रोते कहा, देखो राम मैं एक बहुत बड़ा दुस्साहसी कर रहा हूं, 14 वर्ष तक आपसे अलग रहूंगा, मैं रह जाऊंगा इसी आशा के साथ कि 14 वर्ष का जो दिन होगा उस दिन आप 14 वर्ष पूरे होते ही पहले दिन में ही आप वहां अयोध्या पधार जाएंगे, मैं एक दिन का भी उस समय वियोग सह नहीं सकूंगा, नहीं तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, 14 वर्ष जैसे तैसे मैं निकाल लूंगा। तब जो है सब लोग विदा हो गए। विदा होने के बाद केकई पीछे रही, केकई पीछे आकर राम से एकांत में खूब रोई और रोते रोते कहते, हे राम तुमको बुरा तो नहीं लगा ना, तुम्हारे मन में कोई मेरे से नाराजगी तो नहीं है ना। देखो राम मैं तो तुम्हारी माया की वशीभूत हूं, तुम्हारे राज्य में मैंने बाधा डाली, मेरी बुद्धि बड़ी खराब हो गई, माया से मेरा चित्त मोहित हो गया, यदि कोई तुम्हारे मन में दुख हुआ हो तो हे राम मैं भगवान समझकर तुमसे क्षमा याचना करती हूं, क्योंकि संत महापुरुषों के पास क्षमा बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप तो इस सृष्टि पर सब प्राणियों पर क्षमा करते आए हैं, यदि आप क्षमा नहीं करते तो सृष्टि का काम ही नहीं चलता, आप ही तो इस सृष्टि को माया के द्वारा बनाते हैं और आप ही मनुष्य रूप से अवतार लेकर अपनी माया से लीला करते हैं, आप ही की प्रेरणा से तो हम लोग ये कर्म करते हैं, सारा विश्व आपके अधीन है, आपसे अलग ये विश्व कुछ कर सकता है क्या? जैसे कठपुतली नाचती है तो उसका सूत्रधार कोई और ही होता है, ऐसे ही आपकी माया सब कुछ संसार में काम करती है, उसके सूत्रधार भी तो आप ही हो, आप ही की प्रेरणा से मैंने ये काम किया है, आप ही ने तो मुझे बताया था कि देवताओं का काम करना है, माता तुम हमारे काम में सहयोग करो, देव कार्यम करिष्यता, मैंने भी बहुत कठोर हृदय रखा है ना, तुम्हारा वियोग सहना मेरे लिए कितना कठिन है, परंतु जिससे देवताओं का काम होगा, जिससे आप लीला लिए हैं, जिस कारण के, जिस कार्य के लिए, उसके अंदर मैं आपकी सेवा कैसे कर सकती हूं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े वो सब मैंने किया है, फिर भी यदि आपको कोई कष्ट हुआ हो तो इस पापनी को आप क्षमा कर देना। हे विश्वेश्वर, हे जगन्नाथ, मेरे अंदर किसी प्रकार का पाप का भाव रहा हो और पुत्र वित्त आदि में मेरा स्नेह रहा हो, उसको आप समाप्त कर दीजिए, ज्ञान खड्ग के द्वारा नष्ट कर दीजिए। मैं तुम्हारी शरण में आई हूं राम, मैं परब्रह्म परमात्मा समझकर बात कर रही हूं, मेरे द्वारा लालित पालित पुत्र समझकर के अभी बात नहीं कर रही हूं। राम जी केकी के वचनों को सुनकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, माता तुमने जो कहा बिल्कुल सही है, मैंने ही वाणी को प्रेरित करवाया, देवताओं को प्रेरित करवाया, देवताओं की बुद्धि में बैठी कि सरस्वती को यहां भेजा जाए, सरस्वती आई और उसी वाणी ने, सरस्वती ने तुम्हारे अंदर प्रवेश किया, तुम्हारे अंदर प्रवेश करके पिता के अंदर प्रवेश किया, नहीं तो पिता के अंदर यदि वाणी का प्रवेश नहीं होता, मेरे सरस्वती का प्रवेश नहीं हुआ होता तो पिता बहुत सोच समझ करके तुमको वरदान देते, लेकिन जो कुछ पिता ने कहा, जो कुछ तुमने कहा, उसमें केवल मेरी माया काम कर रही थी, देव कार्यार्थ सिद्ध्यर्थम, केवल देवताओं का कार्य मुझे बनाना था, इसलिए ये सब कुछ हुआ है, तुम्हारा उसमें कोई दोष नहीं, तुम अपने मन को बिल्कुल मलिन मत करो, तुम अपने को पापनी बिल्कुल मत मानो, और देखो माता तुम अयोध्या में इस समय जितना मेरा स्मरण कर सकोगी, इतना अयोध्या में रहते हुए तुम मेरा स्मरण नहीं कर सकती, क्योंकि पास में रहने से याद नहीं होता, जब आदमी प्रेमी दूर होता है तब वो प्रेमी की याद आती है, और मेरी जो याद होती है वो बहुत श्रेष्ठ होती है। सर्वत्र विगत स्नेह, किसी से भी स्नेह मत करना, जब मेरी भक्ति बढ़ती है तो अपने आप स्नेह बंधन टूटने लगते हैं। देखो कोई भी जादूगर होता है, वो जादूगर अपनी जादूगरी से न तो खुश होता है और न नाराज होता है, अपनी जादूगरी से खुश नाराज नहीं होता, अपनी जादूगरी में क्या खुश हो और क्या नाराज हो। ऐसे ही मैं इस संसार में लीला करूं तो मैं कौन से राज्य प्राप्ति से तो राजी होऊंगा और कौन सा मैं राज्य के विघातन में नाराज होऊंगा। मेरा तो भक्त जो करता है बस उस भक्त के उस भाव को मैं स्वीकार करता हूं। इसलिए मां मैं मनुष्य की आकृति के अंदर जो कुछ करता हूं इसमें मूर्ख लोग मोहित होते हैं, जो तत्वतः मुझे जानते हैं वो मेरी माया में मोहित नहीं हुआ करते हैं। बहुत अच्छा हुआ आज के तुम्हारा और हमारा खुला संवाद हो गया, इस संवाद को तुम याद रखना, तुम जो है मुझे याद रखते हुए वहां अयोध्या में सब काम करना, तुम्हारे वो कर्म कोई भी लिप्त नहीं होंगे। जब तक मनुष्य विवेक के बिना कर्म करता है या मेरी स्मृति से हट करके कर्म करता है तब उसके ऊपर कर्मों का भार चढ़ता है, नहीं तो मेरे को याद रखते हुए कर्म करे, मेरे लिए कर्म करे, विवेक पूर्वक कर्म करे, आसक्ति रहित कर्म करे, वो कर्म कभी भी उसको बांधने वाले नहीं हुआ करते हैं। उसने भी राम जी की परिक्रमा की, माँ ये क्या करते हो, इस समय तुम मेरे आराध्य भगवान हो, माँ की जगह माँ हूं लेकिन इस समय आप मेरे भगवान हो। राम जी महाराज को प्रणाम करके परिक्रमा करके वो वहां से विदा हो गए। अब देखो यहां से बाद भरत जी कभी भी केकी को कुछ भी उपालंब नहीं देंगे। केकी का जब ये राम जी से इतना संवाद हुआ, केकी का भाव विचित्र तो था ही और भगवान का भाव उसके अंदर चला गया। इधर सब लोग वहां से प्रस्थान करते हैं, सब लोग अयोध्या आए। अयोध्या आने पर आप लोग मन में सोच रहे होंगे कि जनक जी तो यहाँ आए ही नहीं। जनक जी किसी रामायण में नहीं आते हैं, तुलसीदास जी की रामायण में आते हैं। तो फिर आपको बता दें कि कोई कहेगा कि तुलसीदास जी में तो ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, हम ये माने कि वो माने। अरे राम जी कोई हमारी तरह नहीं थे जो एक बार आए लीला कर गए और चले गए। राम जी कितनी बार आते हैं, कितनी बार आते हैं। अच्छा आप भी माताओं बहनों भाई लोग आप भी देखो, रोज आप यहाँ आ रहे कथा में, आप एक जैसे ही कपड़े पहन के आते हैं क्या? एक जैसे नहीं आते। कभी आप कौन सा कपड़ा पहन लेते हैं, भाई लोग कभी धोती पहन लेते हैं, कभी पैंट पहन लेते हैं, कभी कैसा पहन लेते हैं, कभी कैसा पहन लेते हैं। और ये तो निश्चित बात है कि कल के कपड़े पहने हुए तो कोई दूसरा वही कपड़े पहन के तो आने वाले है नहीं। चाहे आप हो चाहे हम हो, सब कपड़े धुपते हैं और दूसरे कपड़े पहनते हैं। अब कहे साहब आपने ये कपड़े पहने, आप वही है क्या? आप वही है क्या? अरे हम तो वही है, कपड़े अलग अलग है। ऐसे ही राम जी यहाँ हर त्रेता में अवतार लेते हैं। अब असंख्य त्रेताओं में असंख्य बार भगवान आए हैं, उनमें मुख्य जो पात्र होते हैं वो तो वही होते हैं, दशरथ, कौशल्या, राम, विश्वामित्र, जनक, सीता, रावण, ये मुख्य पात्र हैं। इन पात्रों के अंदर कहीं 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 कोई कथा प्रसंग बदलता है तो कल्प भेद है। कल्प भेद माने किसी कल्प में ऐसा हुआ और किसी कल्प में ऐसा हुआ। इसलिए गोस्वामी जी ने ये शंका का निवारण कर दिया, कल्प भेद हरि चरित सुहाए। कल्प भेद के कारण अब नया कोई कवि होगा इन पात्रों को रखते हुए कुछ भी लिख देगा तो वो भी ऐसा ही माना जाएगा। इसलिए भगवान की लीलाओं के अंदर ऐसा कवियों के वाणी में इतनी मतभेद मिलता है, कथा भेद मिलता है, तो कथा भेद कल्प भेद के अनुसार ही है। अस्तु, दूसरी बात एक और है कि जो भगवान के प्रेम में डूब करके भगवान की कथा लिखते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, उनके अंदर भी एक रामायण तैयार होती है। उनके अंदर भगवान का चिंतन होने से अंदर ही अंदर लीला तैयार होती है। वो भी राम जी का अवतार है, वो लीला उसके हृदय में अवतार लेते हैं भगवान, तो अब उसके अनुसार वो लिखते हैं, तो वो सही है, सब सही है। नंदीग्राम में आ गए, सिंहासन पर पादुका रख दी और शत्रुघ्न के साथ वे राज कार्य देखते थे, पर रहते थे ऋषि मुनियों की तरह से ही, वो जमीन पर सोना, घास फूस पर सोना, फल फूल का सेवन करना। गणयन दिवसान एव, रोज गिनते थे आज क्या हो गया, आज इतना समय हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे भरत जी महाराज वहां रहते थे। रामस्तु चित्रकूट आदौ, इधर राम जी महाराज चित्रकूट पर्वत, चित्रकूट आद्रव, चित्रकूट पर्वत पर अनेक ऋषि मुनियों के साथ कुछ समय वहां रहे, तब आसपास के लोग वहां पर ज्यादा आने लग गए। समझ लिए ना, अयोध्या से भी लोग आने लगे। तो इस प्रकार से जब लोग आने लगे तो राम जी ने देखा कि ऐसे करते करते हमारी आगे की लीला तो पूरी हो नहीं पाएगी, अपने को यहां से आगे चलना चाहिए। तो वे वहां अत्रि का आश्रम था, अत्रि के आश्रम में गए, अत्रि ऋषि से प्रार्थना की कि महाराज रामोहम अभिवादये, मैं दशरथ पुत्र राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, पिता की आज्ञा से मैं वन के लिए निकला हूँ और यहाँ चित्रकूट में रहते हुए सब लोगों में जान पहचान बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं और जगह जाना चाहता हूँ, आपसे मैं आज्ञा लेने आया हूँ। तो अत्रि ऋषि ने कहा कि बहुत अच्छा है, तुम पहले हमारे से फल फूल ले ओ। तो फल फूल का सेवन किया और उसके बाद बड़े संतुष्ट होकर के ऋषि बोलने लगे कि देखो तुम्हारी सीता को हमारी पत्नी अनुसुया के पास में भेजो, अनुसुया बड़ी तपस्विनी है, अनुसुया धर्म को जानने वाली है और ऐसे सीता को अनुसुया के पास बैठना चाहिए। तो अनुसुया जी के पास में भेज दिया। अनुसुईया जी ने जानकी जी को देखा तो अनुसुईया जी बड़ी प्रसन्न हुई। अनुसुईया जी ने जानकी जी से कई बातें की और साथ साथ में उनको दिव्य कुंडल दिए। उन्होंने अनुसुईया जी ने कहा, बूढ़ी माँ देखो इसका अर्थ यह है कि छोटी अवस्था वाली बच्चियों को घर में जो बड़े बूढ़े उनके पास में रहना चाहिए, उनसे जीवन का अनुभव मिलता है। सीता जी गई, उस बूढ़ी माँ थी, उनके चरण दबाए, आशीर्वाद दिया कि देखो बेटा मेरे पास बहुत विचित्र चीजें हैं, मैं तुमको ऐसी सुंदर साड़ी दूंगी, वो साड़ी किसी भी समय में तुम्हारी जो है साड़ी मलिन नहीं होगी, ये तो तुम साड़ी लो, ये विश्वकर्मा ने बनाई है, और ये कुंडल देता हूँ, कुंडल देती हूँ तुमको, कानों के कुंडल, इन कुंडलों को धारण करना, तुम्हारे शरीर की शोभा ज्यों की त्यों रहेगी। और ये हम तुमको अंगराग देते हैं, अंगराग माने पाउडर, ऐसा सुंदर पाउडर इसको शरीर पर लगा लोगी तो बरसों के बरसों तक स्नान करने की जरूरत नहीं होगी, भले स्नान मत करो, इसलिए ऐसा सुंदर हम तुमको अंगराग देंगे कि जिससे तुम्हारा सौंदर्य ज्यों का त्यों रहेगा। और ये अंगराग एक बार शरीर पर लगा लोगी तो उसके बाद ये अंगराग उतरेगा भी नहीं, इसलिए ये हम तुमको दे देते हैं। क्यों देते हो माँ? ये इसलिए देते हैं बेटा कि तुम वन में रहोगी, जाने कैसी कैसी परिस्थिति आए, कहाँ जाओ कहाँ आओ, तुम्हारा शरीर भी तो स्वस्थ ऐसे ही रहना चाहिए, तो तुम्हें दिव्य कुंडल, दिव्य वस्त्र और दिव्य अंगराग दे देती हूँ। और दूसरी बात यह है, ये तो मैंने तुमको बाहर की चीज दी है, अंदर में तुमको मैं पातिव्रत्य की महिमा सुनाती हूँ। पातिव्रत्य है ये स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार होता है, जब जैसा पति की अनुकूलता का भाव हो बस उसी के अनुसार करना और पति का सदा आदर करना, ये स्त्री की बहुत बड़ी शक्ति होती है, उसके पास तप होता है। जैसे ऋषि मुनि एकांत में तपस्या करते हैं उनके पास तपोबल होता है, उससे बड़ा तपोबल स्त्री के पास पातिव्रत्य का होता है। अपने पति के अतिरिक्त किसी को भी जो है आदर सबका करे, लेकिन अपने पति की जो महिमा है वो महिमा अपने पति से बढ़कर किसी में ही न देखे। पातिव्रत्यम पुरस्कृत्य राम मनवे ही जाने की। और फिर तुम जो है वनवास की अवधि पूरी करके अपने अयोध्या लौट आना। खूब बड़े प्रेम से उन्होंने भोजन करवाया और उसके बाद राम जी महाराज वहां से विदा होते हैं। विदा होते हुए राम जी बोलते हैं, हे अत्रि महाराज, अब मुझे आगे जंगल में जाना है, अब यहां से तो बहुत से रास्ते निकलते हैं, हम किस रास्ते से किस मार्ग से जाएं, कृपा करके हमको बताओ। अत्रि ऋषि कहने लगे, अरे राम, तुम सारे संसार के पथ प्रदर्शक हो और सर्वस्य मार्ग दृष्टा त्वम, तब को मार्गदर्शक है, तेरा मार्गदर्शक कौन बनेगा रे, तू सबको मार्ग दिखाता है और तुमको कोई मार्ग दिखाए, हम लोग ऐसा संभव थोड़ा ही है, फिर भी तुमने जो पूछा है उसके अनुसार मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे ब्रह्मचारी हैं, ये तुम्हारे साथ चलेंगे, तुमने लोक संग्रह के लिए पूछा है, लोक संग्रह माने दूसरे लोग भी ऐसी बात को ग्रहण करें, लोक संग्रह माने दूसरे लोग ग्रहण करें, संग्रह करना। सीता जी जैसे बूढ़ी माँ के पास गई, राम जी ने जैसे कहा कि हम किस मार्ग से जाएं तो बड़े बूढ़ों से पूछना चाहिए, वो बताएं वैसा करना चाहिए, ये लोक संग्रह है, लोक संग्रह के अनुसार चले। तो उन्होंने कुछ शिष्य साथ में कर दिए, तो वो शिष्य साथ में गए, एक कोस तक गए तो वहां एक नदी आई। राम जी ने उन बच्चों से कहा, अरे भाई ये नदी आ गई, अब इस नदी को कैसे पार करेंगे? तो वो बच्चे के, हम पार करवा देंगे आपको। तो वो बांस लेकर के अपने आप ही उनको दौड़ तौड़ करके और कहा कि इसमें आप बैठिए, हम तो इन बांसों से कई बार पार करते हैं, विद्यते नौका, ये देखो कैसी सुंदर हमने नौका बनाई, इसमें आप पार होइए। भगवान तो इन बच्चों के साथ खेल करने थे, अतः भगवान को तरने में कोई बड़ी कठिनाई नहीं हुई, उन बच्चों ने भगवान को आगे पार कर दिया और बच्चे लोग आ गए। अब भगवान उस नदी को पार कर घोर जंगल में चले गए, जहां देखे उल्लुओं की आवाज आए, पशु पक्षियों की भयंकर आवाज आए, खूब वृक्षों के झुरमुट दिखे, कहीं कहीं सिंह की दहाड़ आए, सिंह व्याघ्रों की आवाज सुनकर के राक्षसों की भी आवाज आती है। तब राम जी ने लक्ष्मण जी कहा, लक्ष्मण अब देखो ये घनघोर जंगल आया है, अब अपने को बहुत सावधानी से चलना है। अब तक तो जो अपना मार्ग था, अपना देश था, वहां अपने लिए कोई भय की बात नहीं थी, यहां तो बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा। हरदम धनुष को यूं ही धनुष के ऊपर बाण ताने में रखना पड़ेगा। देखो आगे मैं चलता हूं, आगे मैं हूं और पीछे तुम चलना, लेकिन तुम्हारी दृष्टि कैसे हो, हमारे पीछे नहीं, तुम्हारी दृष्टि उधर पीछे रहनी चाहिए। मैं आगे यूं देखता हूं तो तुम पीछे यूं रहना, हमारे पीछे पीछे मत रहना, नहीं तो कोई शत्रु पीछे से भी आ सकता है, कोई राक्षस या पशु पीछे से भी वार कर सकता है। तो मैं आगे रहूं, बीच में सीता रहे और उसके बाद तुम ऐसा मुंह किए हुए रखना, यूं पीछे की तरफ मुंह किए हुए यूं पूरा तुम सावधानी के साथ चलना। चक्षुश्चारे सर्वत्र दृष्टम रक्षो भयम महत्, ऐसे जंगलों में राक्षस लोग रहते हैं। और देखो अपने जो ऋषि मुनियों का वेश बनाया ना, ये बहुत सोच समझ करके हुआ है। क्यों? कि ये राक्षस लोग हैं, ऋषि मुनियों से हरदम चिढ़ते रहते हैं, तो अपने पास राक्षस आएंगे ऋषि मुनियों का वेश देखते ही, तो जितने राक्षस आएंगे उन सब राक्षसों का संहार करना है। ऐसी ऐसी इन दोनों की बातें हुई। वहां पर एक बहुत सुंदर पुष्करणी थी, पुष्करणी माने तलैया, छोटी तलैया, ऐसे सुंदर उसमें पुष्प थे, ऐसा मीठा ठंडा और स्वादु जल था। उस वृक्ष के ऊपर, उस पुष्करणी के चारों तरफ वृक्ष की छाया रहती थी, इसलिए सूर्य किधर से भी जो है गति करे वो छाया ज्यों की त्यों रहती। इधर के वृक्ष है, इधर के वृक्ष है, इधर के वृक्ष है, ऐसे उसकी छाया रहती थी। वहां उन्होंने जाकर उसका जल पिया, जल वगैरह पी करके आगे रवाना हुए तो एक खूब भयंकर आवाज आई। राम जी ने कहा, लक्ष्मण सावधान, ऐसी भयंकर आवाज ये राक्षस की है। भक्षयंतम गजब व्याघ्र महिषम वन गोचरम, और इधर जो है वो राक्षस कहीं हाथी को खा रहा था, भैंसे को खा रहा था। भैंसा है वो राक्षस के चंगुल में आ गया ना, तो भैंसा कर रहा था, अरे ये राक्षस है कोई भैंसे को खा रहा है। मैं देखो भैंसे की आवाज, देखो हाथी की आवाज, बड़े सावधान हो गए। जारोपितम धनुर्धृत्वा, धनुष के डोरी पर बाण रख दिया। राम जी ने कहा कि बस अब राक्षस अपनी तरफ भी आ सकता है, सावधान हो जाना। ऐसा उन्होंने किया और इतने में वो राक्षस आ ही गया, बड़ा अट्टहास करने लगा, अरे आज तो हमको नौजवान मनुष्यों का मांस खाने को मिलेगा, हमको इतने दिन तक कभी भी मनुष्यों का मांस नहीं मिला, ऋषि मुनि सब यहां से भग गए और बचे खुचे हमने उनको नष्ट कर दिया, ये आज ये ऋषि पुत्र आए हैं, कौन हो तुम, ये धनुष बाण लेकर के किसको मारने के लिए आए हो, तुम्हारे साथ में स्त्री यही कौन है, तुम हो बड़े सुंदर और मेरे मुख के तो एक एक ग्रास हो, तुम क्यों आए घोर वन में, क्या तुमको पता नहीं था कि मनुष्यों के द्वारा सेवित देश नहीं है, तुम्हारा परिचय दे हो। राम जी ने कहा कि अहम राम है, मैं तो राम हूं, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है और ये जनक नंदिनी सीता है, ये मेरी स्त्री है, हमको हमारे पिताजी ने इस जंगल में भेजा है इसलिए आए हैं, और आप जैसे दुष्टों को शिक्षा देने के लिए आए हैं। तो जोर से अट्टहास किया, वाह 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 वाह, छोटे मुंह आज बड़ी बात तो खूब अच्छी सुनाई तुमने, तुम हमको शिक्षा देने आए हो, तुमने मेरा नाम सुना कि नहीं, मेरा नाम विराद है, विराद मेरे नाम से त्रिलोकी में भय पैदा होता है। मत बधय मत भयात मुनय सर्वे त्यक्त्वा वनम इतो गता। मेरे भय से तो सब जंगलों से ऋषि मुनियों ने ये जंगल खाली कर दिया। तुम जीना चाहते हो तो चले जाओ, सीता को यहां छोड़ जाओ, तुम दोनों यहां से भाग जाओ। राम जी महाराज ने कहा अच्छा इतना बड़ा आदेश देते हो। राम जी ने उसी समय में बाण चलाया, उसके दोनों भुजा काट दी। भुजा काटने वाह वाह, तुमने देखा होगा कि भुजा काटने के बाद अब कुछ नहीं रहा होगा, और दौड़ करके आया तो भगवान ने दूसरे बाण से उसके पैर काट दी। पैर काट दिया तो वो सर्प की तरह सर 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 यूं चले हो, वो सर्प की तरह यार मुंह फाड़ते हुए आ गया, अब तो मैं तुमको खाऊंगा ही। तो भगवान ने तीसरे बाण से उसका गला काट दिया। गला काट दिया तो फिर वो जो है मारा गया। तो राम जी महाराज ने बड़ी जो है उस समय में उसकी राम जी महाराज ने मारे, सीता जी के मन में बड़ी खुशी हुई। सीता जी खुशी हो, वाह महाराज मैंने तो सोचा कि राक्षस क्या का क्या कर देगा, आपने तो तीन बाण में उसको मार दिया। जो ही उसका सिर वहां पर कटा, देवताओं ने दुंदुभियां बजाई और जो है सब आनंदित हो गए। विराट के शरीर से उस समय एक दिव्याति दिव्य शरीर प्रकट हुआ। वो दिव्य शरीर प्रकट होकर के भगवान के सामने हाथ जोड़े हुए खड़ा कर रहा है, हे राम हे कमल नेत्र, बहुत वर्षों से आपकी इच्छा थी दर्शन करने की, मैं विद्याधर था, एक बार अनायास ही बिना किसी कारण से कोप करने वाले दुर्वासा ऋषि ने मुझ पर कोप किया, मुझे शाप दिया तुम राक्षस हो जाओ, उनके चरणों में गिर गया कि राक्षस होने का क्या शाप दिया, मैं मुक्ति चाहता हूं। कहा अच्छा वत्स, त्रेतायुग के अंदर दशरथ पुत्र राम यहां आएंगे, मैं हर ऋषि से नाम पूछता था कि आपका नाम क्या है, आपका जब राम नाम सुना तो मेरे मन में खुशी आई, वो मेरा विराट शरीर तो नष्ट हो गया, त्वन नाम संकीर्तन में वाणी, अब मैं इस अपने असली योनि में आ गया हूं, अब तो मैं आपसे आज कुछ लेकर के जाऊंगा, एक तो आपके चरणारविंदों की स्मृति रहे, एक वाणी के अंदर सदा आपका नाम का निवास रहे और मेरे कानों के अंदर आपकी कथा बसती रहे, मैं आपकी कथा ही कथा सुनता रहूं, और इसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूं, थोड़ी थोड़ी देर में मेरा सिर आपके चरणों में प्रणाम करता रहे। हे प्रभु आप आत्माराम हो, आप सीताराम हो, आप परब्रह्म परमात्मा हो, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करना प्रभु, ये माया के अंदर कहीं उलझ न जाऊं, बस इस माया से मैं बचना चाहता हूं। भगवान ने कहा जाओ विद्याधर, तुम्हारे अंदर अशेष माया के प्रभाव नहीं आएंगे, गुण दोष दोनों ही तुम्हारे अंदर नहीं आएंगे, तुम सर्वथा मुक्त हो गए हो, तुम्हें मेरी भक्ति दुर्लभ भक्ति मिलेगी, भक्ति से संपन्न जो होता है उससे बढ़कर संसार में कोई पुरुष नहीं होता, वो भक्ति तुम्हें मिलेगी, ऐसा उसको आज्ञा दे दी। और फिर वो विद्याधर भगवान का भजन करता हुआ अपने दिव्य धाम में चला गया। विराट के मरने के बाद मारने के बाद भगवान सर्वंग ऋषि के आश्रम में आए। सर्वंग ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए, हमारे यहां घर में राम लक्ष्मण सीता तीनों आए हैं। सर्वंग ऋषि ने कहा महाराज बस कई दिनों से मैं तपस्या करते हुए आपकी भक्ति करते हुए यही सोच रहा था कि कब आप आए कब आप आए, आज आप यहां आ गए, अब बस अब इस शरीर के द्वारा और कोई देखना नहीं चाहता, जिस शरीर से आपके दर्शन हो गए अब इस शरीर से क्या किसको देखना है, इसलिए अब मैं अपना शरीर छोड़ता हूं। तो उन्होंने एक चिता बनाई और चिता बना करके उसमें उन्होंने शरीर को प्रवेश कर लिया भगवान का ध्यान करते हुए। किसी ने पूछा कि क्या ये उचित था, कि ये वर्तमान समय में उचित नहीं होता, हर चीजें अपने अपने समय की होती है, जैसे दवाइयों पर लिखा हुआ रहता है एक्सपायरी डेट, ऐसे ही ऐसी ऐसी साधनाएं इस वर्तमान समय के लिए नहीं होती हैं। हम इस वर्तमान युग में उस समय की लीलाओं का, न जाने किस समय की लीला, उसकी तुलना करने लगते हैं। अपने समय के लिए कहीं शास्त्रों में ऐसा नहीं आता है। दूसरी बात यह है कि किसी भी भक्त की जो भक्ति होती है, उस भक्ति का जो रहस्य है वो रहस्य ही समझने का होता है, और बाकी क्रियाएं ऐसे सब के सब वैसी की वैसी करने की नहीं होती है। अस्तु, उसकी भक्ति कैसी है, आपको देख लिया और हमें अब कुछ नहीं देखना है। एक भक्त को भगवान के दर्शन हो गए, कृष्ण भगवान के दर्शन होने के बाद उसने जो है सीख ले ली और अपने आंख फोड़ ली, बस आपको देखने के बाद और देखना ही नहीं चाहता हूं। तो फिर भगवान ने उसकी आंख की पीड़ा को दूर कर दिया, लेकिन नेत्र ज्योति जान करके नहीं दी। ऐसे कई भक्त हुए, किसी की क्या है, किसी की क्या है। तो ये हर लीला हर भक्त का अनुसरण नहीं किया जा सकता। हमारे सर्वंग ऋषि भगवान का ध्यान करते करते चिता में प्रवेश कर गए, और चिता में प्रवेश करते हुए कहने लगे, महाराज अब मैं इस शरीर को जला करके आपका जो ब्रह्म लोक है उस ब्रह्म लोक में जाता हूं। हे अयोध्यापति भगवान, आप और आपके बाई और सीता मेरे हृदय के अंदर बसे रहना चाहिए। ऐसा ध्यान करते हुए जो है पंच तत्वों में विलीन हो गए। अब जो है सर्वंग ऋषि के जब इस प्रकार से बात हुई ना, तो सब लोग वहां ऋषि मुनि अगल बगल के इकट्ठे हो गए।